एहेस्केल अध्याय 25। अब परमेश्वर इसराइल के आसपास के देशों पर आने वाले अपने दंड के विषय में कहता है। इनमें सबसे पहला लक्ष्य है अमोनियों का देश। आज का जो अमोन नगर जॉर्डन की राजधानी है, वो उस समय अमोनियों का देश था। उसके साथ दूसरी भविष्यवाणी मोआब के लिए है, जो आज का मोआब है। जब हम एदोम की चर्चा करेंगे तो वो आज की दक्षिणी जॉर्डन है। उसके बाद आएगी ददान के लिए भविष्यवाणी, जो आज का सऊदी अरब है। इस प्रकार इस देशों पर परमेश्वर ने अपने दंड की घोषणा की। एहेस्केल अध्याय 25 पद 3। उनसे कह, हे अमोनियो, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वो अपवित्र किया गया आह आह कहा, जब उन्होंने सुना था कि मंदिर का नाश हो गया और इसराइली मारे गए, तब उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया। वे सड़कों पर नाचे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने सदत की हत्या पर आनंद मनाया था। मनुष्य बदलता नहीं है, उसमें अब भी पशु प्रवृत्ति है। तुमने मेरे मंदिर के विनाश पर आहा कहा था। एहेस्केल अध्याय 25 पद 3 से लेकर 6 तक। और इसराइल के देश के विषय जब वो उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा। इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्वियों के अधिकार में करने पर हूं, और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। और मैं रब्बा नगर, ये नगर अमोनियों की राजधानी था, को ऊंटों के रहने और अमोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुमने जो इसराइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इसराइल के विनाश होने और उजाड़े जाने पर उन्होंने बहुत आनंद मनाया, नाच गान किया, उछल कूद की, तालियां बजाई। एहेस्केल अध्याय 25 पद 7। इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा। मैं तेरा सत्यनाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। अब मोआब के लिए। एहेस्केल अध्याय 25 पद 8। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। मोआब ने भी यहूदा के विनाश पर आनंद मनाया था। एहेस्केल अध्याय 25 पद 9 से लेकर 11 तक। इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्यशिमोत, बालमोन, किर्यातिरिम, जो उस देश के शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्वियों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अमोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अमोनियों को यहां तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर ना रहेगा। और मैं मोआब को भी दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अब परमेश्वर आसपास के देशों को बताएगा कि वो कौन है। एहेस्केल अध्याय 25 पद 12। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया, जब यहूदा पर बैरियों ने आक्रमण किया था और ये निश्चित था कि वे हारेंगे, तब एदोम वासियों ने भी उन पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा था। इस प्रकार उन्होंने उनके जले पर नमक छिड़का था। एहेस्केल अध्याय 25 पद 12 और 13। और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा। आयुब को परामर्श देने तेमान से भी एक मित्र आया था। एहेस्केल अध्याय 25 पद 13 में आगे लिखा है, और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा। ददान आज का सऊदी अरब है। शीबा ददान। एहेस्केल अध्याय 25 पद 13 से लेकर 17 तक, और वे तलवार से मारे जाएंगे, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जल जलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिस्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं पलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं, और करेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा, और मैं जल जलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अगले अध्याय में सोर के विषय भविष्यवाणी देखेंगे, जो बड़ी ही आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है, क्योंकि उसका एक एक शब्द इतना सही उतरा है कि अचंबा ही होता है। ये इसलिए कि वे जाने यहोवा ही परमेश्वर है। जब एहेस्केल सोर के राजा का वर्णन करता है, तब आप देखेंगे कि पतन से पूर्व शैतान का क्या वैभव था। तब उसका पतन और आज के समय से संबंधित उसकी भविष्यवाणियां थी। मेरे मस्तिष्क में धर्मशास्त्र का वो पद आता है, परमेश्वर ने खोजा कि कोई तो हो जो उसके और इसराइल देश की मध्यस्थता करे, परंतु उसे एक भी व्यक्ति ना मिला। अतः उसका दंड, उसका क्रोध भड़क उठा और उनका नाश हो गया। मैं उनकी दशा को पढ़ता हूं और अखबारों को पढ़ता हूं तो दहल उठता हूं, क्योंकि हमारी दशा ठीक वैसे ही है। परमेश्वर अब कब तक सहन करेगा? परमेश्वर कब तक अधर्म को बढ़ने देगा? परमेश्वर ही जानता है, परंतु इस समय वो एक मध्यस्थ की खोज में है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपसे मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में बात करें और आप उसमें सहभागी हो जाएं। ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का विषय है। परमेश्वर आपको अपनी सनातन किसी आशीष दे, उसका हाथ आपके जीवन पर उठा रहे। ये जानना अच्छा ही होगा कि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के निमित्त नहीं रख छोड़ा है। हम उसके क्रोध और उसके न्याय का दिन नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आने वाले क्रोध से अपने प्रेम के द्वारा बचा लिया है। मेरा मन उसके लिए व्याकुल है जो मसीह को नहीं जानते, क्योंकि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब वे रह जाएंगे। उन्हें उसके क्रोध की उस अग्नि का सामना करना होगा जिसके द्वारा वो बैरियों को भस्म करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। आइए हम प्रार्थना करें। जैसे धर्मशास्त्र कहता है, हम उन्हें आग में से निकाल लें कि उन्हें आने वाले दंड से बचाने का प्रयास करें। मध्यस्थता की प्रार्थनाओं द्वारा उन्हें पाप के अधिकार से मुक्त कराएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको एक मध्यस्थ बनाए तथा आपको अपनी महिमा के निमित्त लाभ में ले, यीशु के नाम में।